اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد،
اللہم صل علی محمد وعلى محمد،
ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پانا است حسین، سردا ندا دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، صلی اللہ علیہ محمد،
اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.
عزاداران امام، خیسر باغ بومبے، سکسٹھ مجلس، 1443 ہجرا 2021 کی، دن گزرنے کے بعد یہ رات کی مجلس ہے، شب سات محرم. پہلی مجلس سے میں خواجہ اجمیری کی اس ربائی پہ آپ سے معروضے کر رہا ہوں، اور آج سکس مجلس ہوگی، ابھی تین مجلسیں اور باقی ہیں. دوستو، خواجہ اجمیری نے جو لکھا، بار بار میں یہ بات بول رہا، آج وہ انجوائے کر رہے ہوں گے اس لائف میں جو ایک ہڈن لائف ہے، جو ایک پوشیدہ زندگی ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ وہ لائف کیسی ہے، صرف قرآن میں ہے یا حدیثوں میں. کوئی جا کے واپس نہیں آیا، آ کے اس نے یہ نہیں بتا کہ وہ ایسا 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 ایسا، لیکن واقعات ہے علماء کے کہ جنہوں نے بتایا کہ اگر کام کرو گے تو وہاں پہ ہمیشہ اجر ملے گا، یہ معصومین کے ارشاد. اور اس کو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ ظاہری طور پہ جو بالکل اپنے لیے جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں، ان کی لائف گزر گئی جب، لیکن ایک دفعہ اس لائف میں پہنچنے کے بعد دنیا نے ان کو بھلا دیا. پیسہ کسی کو یاد نہیں رکھتا، تمہارا کام یاد رکھتا. اگر آپ پیسہ سمجھ رہے کہ میرے پاس ملینز روپیز ہیں، میں ڈکٹیٹ کراؤں گا ٹرمز، ہو سکتا جب تک تم زندہ ہو ڈکٹیٹ کرو گے، مرنے کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، ایک فاتحہ نہیں پڑھیں گے. اس کے برعکس میں آپ کو ایگزامپل دیتا، اللہ ہم سب کو کوفے کی زیارت مولا کے گھر کی نصیب ہو. گئے تم لوگ؟ اگر آپ مولا کے گھر پہ جائیں، سب ماشاءاللہ زائرین ہیں، بار بار جانا نصیب ہو انشاءاللہ، اور جو نہیں گئے اللہ جلد سے جلد بھیجے انشاءاللہ. آپ سوچو، کوفے میں جب مولا کے گھر کو جاتے ہیں، گھر ایگزیکٹلی وہی بلڈنگ تو نہیں ہے، جگہ وہی ہے، مولا کے گھر سے کے اندر جب آپ جاتے ہیں، مولا کے چھوٹے چھوٹے رومس ہیں، اس کے بعد اندر ہی وہ دیوار جو ہے، دیوار کے بعد ایک کھنڈر ہے، کھنڈر سمجھتے ہیں، کھنڈرات ہے، ٹوٹے پوٹے کھنڈرات ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ابن زیاد کا محل تھا، یہ ابن زیاد کا گھر تھا، جو اتنا جابر بادشاہ تھا، گورنر تھا، بادشاہ جو بھی سمجھو آپ، ظالم ترین، پورے کربلا کی فوج کو اس نے تیار کر کے بھیجا تھا، اس کے نسل کے اوپر لعنت ہے عاشورے تک، قیامت تک. زیارت عاشورا میں پڑھتے ہیں آل زیادہ، میں آگے نہیں بولتا، زیارت عاشورا ہمارے پاس سند ہے کہ اتنا ظالم کہ اس نے مولا حسین کو شہید کرنے میں اس کا پورا ہاتھ تھا، یزید کا یہ گورنر تھا، آج اس کا کھنڈر ہے وہاں پہ، وہیں پہ. और इसने अपनी, प्लीज गौर से सुनना, इसने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे इमाम अली के चाहने वालों को कैद किया था, जेल में भेजा था। इसकी जेल कैसी थी पता है? इंग्लिश का वर्ड है एस, ऐसा ऐसा है ना, एस यहां थी जेल 20 मीटर्स नीचे, ऊपर नहीं, ऐसा ऐसा जमीन के नीचे, जो इसकी जेल के अंदर थे उनको पता नहीं था कि ये दिन है या रात है। मैं कितनी आसानी से बोल रहा हूं, आप लोग आसानी से सुन रहे। कोई क्रिमिनल्स नहीं थे अंदर, कोई मर्डरर्स नहीं थे अंदर, कोई चोर बदमाश नहीं थे अंदर। 3,500 आप सोचो मैं क्या बोल रहा आपसे, ये लोग कौन थे? सारे के सारे इमाम अली की शिया थे, कुफे के, जिसमें जनाब फिजा के 4 बेटे थे। मुख्तार इब्ने अबू उबैदा सखफी था, इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर, कैसी कैसी पर्सनालिटीज के जो रियल इमाम अली का शिया। हम तो जीरो है, जीरो है। वी जस्ट से वी लव इमाम अली बट वी डोंट लव इमाम अली। हमारा हशर क्या होगा हमको ही मालूम है। वो लोग ऐसे इमाम के चाहने वाले जिन्होंने सेक्रीफाइस किया इमाम के शेयत के लिए। दोस्तों आज अगर मैं एयर कंडीशन में बैठ के खैसरबाग का याशरा पढ़ा, मुझे कोई थ्रेट नहीं। जब मैं मजलिस पढ़ने आ रहा था, मुझे कोई गन पॉइंट पर रोक के नहीं बोला कि अगर तुम मजलिस पढ़ोगे तुमको, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी नस्ल को खत्म कर देंगे। प्लीज आप मेरी तरफ देखते रहो, बस तबाह कर दे। कोई थ्रेट है? आप लोग भी आए मजलिस में, कोई थ्रेट थी आपको? कोई नहीं, कुछ नहीं था। वो लोग काली, अगर वो लोग इमाम अली का नाम ले रहे थे तो इसकी सिपाही जाके पकड़ के ला लेते थे, लाके जेल में। कोई कोई रिकॉर्ड नहीं क्रिमिनल, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं बॉम्बे में। इंशाल्लाह कोई एक चीज बताओ जो इमाम अली के शिया जो कूफे में, जो इब्ने ज़ियाद के जेल में थे, वो कौन थे? वो ये वही लोग थे जिन्होंने मौला हुसैन को खत भी लिखा था कि मौला आप आइए, हमें सबको पकड़ के अंदर डाल दिया। उसमें एक ऐसी शख्सियत थी कि जिसका नाम सुन के हम खुश होते, जिसका नाम सुनने के बाद पता चलता अली वाला ऐसा होता, समझो वो कौन है? मीसम तम्मार। मैं क्या बोल रहा यार, खामोश मत सुनो ना। मीसम, वी लव मीसम, कैसी पर्सनालिटी थी मीसम के। मैं इंशाल्लाह इनका एक वाकया जो गुलिस्तान का अशरा पढ़ूंगा उसका ऐलान भी कर दो, मुझे बोला गया गुलिस्तान हिंद का अशरा 12 मुहर्रम से हर साल की तरह, यह भी बहुत पुराना अशरा है, 40 साल पुराना अशरा है बॉम्बे का। 12 मुहर्रम से 12 मुहर्रम संडे के दिन से, फ्राइडे आशुरा है, संडे के दिन से 21 मुहर्रम तक इसी सफीनतुल नजात के ऊपर ज़ैनबिया चैनल पे और अली टीवी पे लाइव मदीस आएगी, गुलिस्तान हिंद शार्प 9 o'clock यही टाइम। ये थोड़ा सा लेट हो रहा, 11 बजे का अशरा है, लेकिन गुलिस्तान हिंद का अशरा ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगा। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे पढ़ूंगा, उसमें मीसम तमार का एक वाकया पढ़ूंगा। आज नहीं पढ़ता मैं, आज ख्वाजा अजमेरी की सुनवाई पे जो 5 दिन से मोटिवेशन की बातें कर रहा, ये पूरे 10 दिन तक ये करता रहूंगा आपकी एग्जाम्पल्स देखे। मीसम तमार सीनियर सिटीजन 60+ इमाम अली के कंपेनियन है, उनको इसने कैसे मारा था? इनके हाथ काटे थे। मैं कितनी आसानी से बोल रहा, इनको हैंग किया था, इनकी जबान काटे थे। सोचो आप, क्राइम क्या है? सिर्फ इमाम अली की मोहब्बत है और कुछ नहीं, सिर्फ इमाम अली की मोहब्बत। आप देखो कैसे कैसे सैक्रिफाइस के बाद आज शेर यहां तक आई। हमको ये मैं क्यों पढ़ रहा, हमारी यूथ को ये पता चलना चाहिए कि अगर आज तुम मुंबई में मजलिस करे, 1 घंटा मातम करे, 2 घंटे मातम करे, 4 घंटे मातम करे, तो कोई बिग डील नहीं है। 24 घंटे करो, 24 घंटे मातम करो, 24 घंटे आजादारी करो, लेकिन सोचो तुम जो आज आजादारी कर रहे, मातम कर रहे, ये किसी का सैक्रिफाइस है जिसकी वजह से आज तुम कर रहे मातम। अगर वो कुर्बानी नहीं देते उस वक्त, तो हमारे पास कोई एग्जाम्पल नहीं। तो मैं बोलना यह चाह रहा کہ ابن زیاد آئرن راڈ کے ذرا حکومت کر رہا, آئرن راڈ کی ذرا ہر شیعہ نے حیدر کرام کو پکڑتا جیل میں ڈال دیتا, اور میسم کو ختم کر دیا, ہینگ کر دیا, ہاتھ پیر کتنا, آپ سوچو ہاتھ کاٹ رہا, پیر کٹا, ہینگ کیا, فائنلی زبان کاٹ دیا, میسم کولیپس ہو کے زمین پہ گر گیا. اس وقت پلیز پلیز غور سے سنو, اس وقت جو رپورٹرز تھے, رپورٹرز آپ لوگ آگے آ جاؤ, سب پڑھو محمد والے محمد, ایک بابا زبان سلوات پڑھ لیں پلیز, اس وقت جو رپورٹرز نے میسا, پلیز غور سے سنو, میسا میں تما کی ڈیتھ لکھی جو تاریخ میں, انہوں نے کیا لکھی کہ میسا امام علی کا شیعہ تھا, ابن زیاد نے ان کو ہینگ کیا اور ان کے ساتھ یہ یہ ظلم ہوا, ان کی لاش کو پھینک دیا گیا ڈیڈ باڈی کو, اور وہاں پہ گریو کھول کے بند کر دیا. آج 1400 سال کے بعد ابن زیاد جہاں رہتا تھا غرور و تکبر کے ساتھ, بلینز آف ڈالر آج کی لینگویج میں بول رہا میں, اتنی دولت تھی اس کے پاس جو مسلمانوں سے جمع کیا تھا, وہ ساری دولت کے ساتھ مر گیا, واضح رہنم ہوا. آج ابن زیاد کا نشان نہیں ہے وہاں پہ, میسم کا مزار بنا ہوا ہے. کیا بول رہا ہے یار, کام کرو گے ریفر فار امام حسین, میں یہی موٹیویشن چاہتا اپنے لوگوں میں, کوئی ایک کام کر کے خوش مت ہو جاؤ, آئی ڈیڈ دس, وٹ مین آئی ڈیڈ دس, خالی آئی ڈیڈ دس نہیں ہے, ہر وقت دعا کرنا, یہ محرم بہترین ٹائم ہے تم کو دعا کرنے کا کہ مولا گیو می چانس, گیو می چانس, گیو می چانس, ہر نماز میں بولو مولا مجھے موقع دو, مولا مجھے موقع دو. اگر ایمان تم کو موقع دے دے تو دنیا اور آخرت تمہاری ہے, ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر تمہارے سارے بیڈ ڈیلز ریز ہو جائیں گے اور گڈ ڈیلز انکریز ہو جائیں گے. واٹ وی نیڈ ایکچولی, وی نیڈ کہ ہمارے بیڈ ڈیلز ریز ہونا اور گڈ ڈیلز انکریز ہونا. جیسا کل بات جہاں تک پہنچی تھی آغا خمینی کی, میرے پاس اتنا پریشر ہے آغا کا, آغا کی طرف سے نہیں ہے مومنین کی طرف سے, اللہ کرے آغا کی طرف سے آ جائے یار, اس سے بڑی بات کیا. میرا ایسا سید, ایسا موسوی سید جس نے کام کیا جو ہمارا آئیڈیل ہے, رہبر محسم, رہبر انقلاب, ہم کو اپنا آئیڈیل بنانا ان کو کہ ویری ویک پرسن, کمزور بوڑھا آدمی, لیکن زبان ایسی, ان کا کیریکٹر ایسا, کل جیسے میں نے کہا کہ کردار تھا کہ بڑے, اتنا بڑا ملک فرانس نے اپنی پالیسی بدلی. دوستو آپ بہت ایزی لے کے سنے تھے, وہ مزاق نہیں ہے, اتنا اسٹرانگ کنٹری کہ پالیسی بدلنا ایک آدمی کے لیے, مطلب یہ ہماری جیت ہے, یہ علی والوں کی جیت ہے. پوری ہسٹری میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں, 21 بار ہم تک انشاءاللہ ہوں, کوئی مجھے ایک انسیڈنٹ بتا ہسٹری کا, کوئی ایک انسیڈنٹ بتائیں کہ ریلیجس لیڈر کے کہنے پر ایئر لائن نے اپنی پوری تاریخ کو بدلا, یہ سوائے رہبر انقلاب کے کوئی نہیں. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی وکٹری ہے ہماری, بہت بڑا اچیومنٹ ہے. لیکن ہم جیسا میں نے کہا کہ ہر وقت سب چاہنے والے تو نہیں رہتے, 100% فالوئنگ کسی کی نہیں ہوتی, اللہ کی نے بھی تو ہماری ہوں گی نہیں. نبی موسیٰ جب تبلیغ کر رہے تھے, پریچ کر رہے تھے, تو لوگ ان کی نہیں مان رہے تھے, تو موسیٰ نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار یہ لوگ میری بات ہی نہیں سنتے, پلیز ان کو کچھ کر دے, ان کو بول میری بات سن. اللہ نے کہا موسیٰ میری نہیں سنتے تو تمہاری کیا سنیں گے, آپ سمجھ رہے میری بات, کسی کی 100% پالیسی نہیں ہوتی, 100% فالوئنگ کسی کی نہیں ہوتی, ہونا بھی نہیں چاہیے, ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر 100% فالوئنگ کسی کی ہے تو دیر از سمتھنگ رانگ. آغا خمینی بولتے کہ اگر تم کوئی اچھا کام کرو, اچھا کام کرو دنیا میں, اور 40 دن تک, 40 ڈیز تک تمہارے پر کوئی پتھر نہیں آئے تو پلٹ کے دیکھو, از سمتھنگ رانگ. کیا بات بولے یار, कि आप अच्छा काम करेंगे ना, कोई लाके आपको बुके नहीं देगा, ओ यू डूइंग गुड जॉब, ये नहीं बोलेगा आपको, बल्कि पत्थर मारेगा। अगर पत्थर मार रहा तो समझे बेहतरीन तुम्हारा काम अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। आप समझ रहे मेरी बात? तो आप कभी घबराना नहीं अच्छा काम करते हुए, किसी की आप हेल्प कर रहे हो, कोई इमाम के लिए काम कर रहे हो, कोई भी काम करो, हर तरफ से पत्थर आएंगे। आना, एतराज होना, यह बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब तुम्हारा काम इमाम की बारगाह में कबूल हो रहा। घबराना नहीं, अगर तुम क्लीन है, तुम्हारे पास डेडिकेशन है, तो देन यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू वरी। तो बरा आला का कोई 100% फॉलोअर्स नहीं थे। अब इन ईरान का एक अजीब इंटरेस्टिंग वाकया बताता आपको, एंड इसके बाद आपको पता चलेगा कि आगा का स्टेटस इमाम की निगाह में क्या था। इमाम की निगाह, दोस्तों बहुत आसानी से बोल रहा, इमाम की निगाह, जमाने के इमाम, जमाने का इमाम मतलब तेरा मासूमीन की मर्जी वही है। इमाम की निगाह में रहबर इंकलाब का स्टेटस क्या था? 2 साल गुजरे आगा को आके, आई थिंक 81 का वाकया है, पूरे ईरान की एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स बहुत बड़ी चीज होती, एक मुल्क का, एक कंट्री की बैकबोन जो होती है वो एयरफोर्स होती है, पूरी कंट्री की आर्मी से ज्यादा स्ट्रांग एयरफोर्स होती है। ईरान की पूरी एयरफोर्स रिवोल्ट कर गई, रिवोल्ट कर गई आगा के खिलाफ, और उनकी प्लानिंग ये थी कि आगा को उठाएंगे वहां से, उठा के एक सेफ जगह पर ले जाके छोड़ देंगे और वक्त पे आगा को मार देंगे और हम वापस शाह को ला लेंगे। हंगामा मच गया, रिवोल्यूशन द रिवोल्यूशन हो गया। बड़े बड़े ओलों में, नाम नहीं लेता, सब आगा के पास आए, आके बोले आगा गजब हो गया, एयरफोर्स में एक रिवोल्यूशन आ गया, जो शाह के लोग थे, अब हम क्या करेंगे, अब कोई भी मोमेंट पे ये लोग हमला करेंगे, एयरफोर्स ऊपर से हमला करें तो खत्म हो गई बात, और ये इनकी प्लानिंग है। रहबर इंकलाब सुन रहे बैठ के, एक एक आदमी एक एक राय दे रहा, मतलब सीनियर जो उलमा थे वो लोग एक एक आदमी एक एक प्लान एडवाइस करा कि ये 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 करो, ये करना, सब हाथ मल के बैठ गए कि अब हमारे हाथ में कुछ नहीं। आगा ने कहा वेट फॉर 1 आवर, कितना यकीन है देखो। अब दोस्तों एक एक जुमला गौर से सुनकर एंजॉय करो यार, वेट फॉर 1 आवर, 1 घंटे का इंतजार करो। वो अंदर कमरे में गए, दरवाजा बंद किया, ही वेंट अलोन, अंदर गए, दरवाजा, मशहूर वाकया है उनकी जिंदगी का, अंदर गए, डोर को क्लोज किया, डोर को क्लोज करके 1 घंटे के बाद बाहर आए। अब सब इंतजार में कि आगा क्या ऐलान करेंगे। आगा ने कहा कि मुझे ईरान टीवी से, नेशनल टीवी से एड्रेस करना है, रेडियो एंड टीवी से मुझे एड्रेस करना है। तो इन उलमा ने कहा कि आगा कोई खास हुक्म देना चाह रहे हैं? तो कहा हाँ, मेरा हुक्म यह है इस वक्त, प्लीज गौर, मेरा हुक्म यह है कि ईरान के जितने इंसान है, 90 मिलियन लोग थे, 90 मिलियन का पॉपुलेशन है, का जितनी औरत मर्द लड़की लड़का बच्चे सब अपने घरों से बाहर आ जाओ, सब अपने घरों से बाहर आ जाओ। तो लोगों ने कहा आगा आप क्या गजब कर रहे, एयरफोर्स उनके पास है, अगर बॉम्बिंग हुई तो लाखों आदमी मर जाएंगे। आगा ने कहा यह मेरा हुक्म है। कहा थिंक योर सेल्फ, थिंक योर सेल्फ, अब यह सही। आगा ने कहा यह मेरा हुक्म है। तीसरी मरतबा जब लोगों ने कहा आगा व्हाट आर यू डूइंग, लाखों लोग मर जाएंगे, आगा ने कहा तुम्हारी बात सुनो या इमाम मेहदी की बात सुनो। किसकी बात सुनो, तुम्हारी या इमाम मेहदी की? सब खामोश बैठ गए। आगा टीवी पे आए, आके बोले कि ये मेरा हुक्म है, हर आदमी बाहर आ जाओ। जब पूरा नेशन ओपन आ गया, रोड पे आ गया, एयरफोर्स अब करोड़ों को तो नहीं मार सकती, उनके अंदर रिवोल्यूशन आया और ये इनकलाब खत्म हो गया। ये है देखो, जब आप सिंसियर रहते ना तुम्हारे काम में, इफ यू आर रियली सिंसियर, तुम्हारी मदद, इमाम की मदद ऐसे होती। क्या यकीन है मेरे इमाम के ऊपर, यह काम करो। देखो पूरी जिंदगी को उन्होंने नजफ़-ए-अशर की जिंदगी देख लो और कहीं की भी जिंदगी, उनकी पूरी लाइफ को। दोस्तों मैं अजीब बात बोल रहा कि मुझे, हम तो चाहने वाले, आज तक कोई मीडिया ने, कोई किताब में ये आज तक कोई किसी ने नहीं लिखा कि आगा का खुदा ना खास्ता किरदार में ये था, कैरेक्टर में ये था। जबकि आज जितने लीडर्स हैं, मैं नाम नहीं बोलता, 1000 उनके लिए बातें बोलते, ये था, ये है, ये है, ये है, ये है, ये इतने स्ट्रांग कैरेक्टर का आदमी था, ये इतना स्ट्रांग, ब्रेन वाइज स्ट्रांग था, कैरेक्टर वाइज स्ट्रांग था। अगर और अब बात सुनो, मैं यूथ को बोल रहा, खैसरबाग के मेंबर से बोल रहा, मुंबई में बोल रहा, तीनों चैनल्स पे बोल रहा, पूरी दुनिया सुन रही मुझे, सब कैरेक्टर वाइज इतना स्ट्रांग, किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, हक के मामले में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं। जो इमाम अली की सीरत है, मौला अली के बारे में यह है कि मौला अली कभी हक के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। हक के मामले में इमाम अली बहुत सख्त है, बेइंतहा सख्त। मौला का जमाना कूफे का, छोटा सा बादशाह बता दो कि मौला अली कैसे सख्त है। मौला कूफे के बाजार से गुजर रहे, और से सुनो, मौला कूफे के बाजार से जा रहे, मार्केट से, फिश मार्केट थी वहां पे, हर दौर में रही फिश, और अरब तो बहुत शौक से खाता फिश। फिश मार्केट से मेरा मौला गुजर रहा, खंबर साथ है, एक बंदा बैठ के विदाउट स्केल वाली फिश बेच रहा। अली रुक गए, रुक के कहा कि तू ये कैसे बेच रहा? उसने कहा व्हाट यू मीन कैसे बेच रहा, ये फिश आई थी मेरा बाजार में, मेरी दुकान में बेच रहा। तो मौला ने कहा तुझे मालूम नहीं ये हराम है? उसने कहा मौला मुझे ही नहीं मालूम था ये हराम है। अली ने खंबर से कहा इसको गिरफ्तार करो, इसको अरेस्ट करो और इस पर 10 कोड़े लगाओ कि तू, जुमला सुनो, यह हम सबके लिए है, तूने बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जब तक मालूम नहीं किया कि हलाल क्या है हराम क्या है? कि ये ब्लाइंडली कोई चीज नहीं करना है, यू शुड नो कि ये हलाल है ये हराम है। इमाम ने कहा तूने स्टार्ट कैसे किया बिजनेस? उसने कहा फौरन, उसने क्या कहा, उसने कहा मौला मैं तो आपके शिया हूं, मौला मैं तो आपके शिया हूं, और आज का शिया नहीं हूं, उस जमाने से हूं। आप समझ रहे कौन सा जमाना? उस जमाने में जब लोग नहीं मानते थे, हमारे बाप दादा आपको मानते थे, अब मैं तो आपके शिया हूं। अली ने कहा इसको 10 और लगाओ, इसको 10 और लगाओ। रोने लगा मौला, मुझे, मैं आपका शिया, मुझे मार रहे। इमाम ने कहा तू बार बार ये क्यों बोल रहा कि मैं आपका शिया हूं, तेरा अमल क्या है? एक मैसेज दिया इमाम अली ने, जबान से मत बोलो शिया, तुम्हारा अमल बताना तुम शिया, अगर तुम्हारा एक्शन नहीं है फिर फायदा क्या? तो मौला अली उसूल के मामले में बेइंतहा सख्त, उतने करीम है उतने रहीम। अब आप उसूल के बारे में एक और बात बोलता, एक आदमी मौला की हुकूमत में चोरी की, उसको पकड़ के लाए, कहा या अली से कहा मौला इसने चोरी की है, इस्लाम में चोरी का इसकी सजा क्या मालूम है? फिंगर्स को काटते। तो अब इमाम ने क्या कहा, प्लीज गौर से सुनो, उसूल में कैसे सख्त। इमाम ने कहा कि तुमने चोरी की? उसने कहा यस मैंने की, हमारी तरह झूठ नहीं बोला, हमारी तरह एक्सक्यूजेस नहीं लिए, ये ऐसा रीजन था, वो ये रीजन था, वो रीजन था, इसलिए मैंने शेव किया, इसीलिए मैंने ये गांव गुना किया, इसीलिए मैंने पिक्चर देखा, इसीलिए मैं म्यूजिक सुनता हूं मुहर्रम के बाद। मैं कुछ बोल गया? अभी तो नहीं सुनता, ये साल मुहर्रम में गिफ्ट दो इमाम हुसैन को, मैं यूथ को बोल रहा, पूरी दुनिया में बोल रहा, ये साल मुहर्रम का गिफ्ट दे दो मौला हुसैन को, बोलो मौला आज के बाद मैं गाना नहीं सुनूंगा। 1443 हिजरा के मुहर्रम का तोहफा है आपको, देन यू सी हाउ यू विल ग्रो इन योर लाइफ। तो उसने क्या किया? उसने कहा यस मौला मैंने चोरी की। अब अली ने हुज्जत का तमाम किया, क्या तेरी कोई मजबूरी थी उसने कहा कोई मजबूरी। कहा तो भूखा था तीन दिन से, उसने कहा नहीं भूखा नहीं। मौलाना ने कहा तुझे मालूम है इसकी सजा क्या है? वो कहता है मुझे मालूम है उंगलियां। अली ने कहा इसकी उंगली काट दो, इसके फिंगर्स काटेंगे। कब जो भी उस जमाने में सिस्टम था, बैंडेज किया, ये बाहर आया, कूफे में हंगामा मच गया कि अली ने अपने शिया के उंगलियां काटी। प्लीज गौर से सुनो, ये बाहर आया, अली उसूल में सख्त कैसा है, ये इस्लाम का हुक्म है, इमाम ने ये नहीं कहा शिया छोड़ दो यार, हम यही करेंगे नहीं, अरे ये तो अपना रिश्तेदार है ना, क्या बोल रहा हूं, हम यही बोलेंगे ना, अरे ये तो अपना है छुपा लो इसको। उसूल का मामले में हमारा इतना सख्त, वो बाहर आया, बाजार में आया, कूफे के बाजार में आके अपने हाथ का, लोग उसके साथ साथ है, और इससे लोग बोल रहे अरे ये तुम तो इतने बड़े शिया हो, अली ने तुम्हारी उंगलियां गाड़ दी, अली ने तुम्हारी उंगलियां गाड़ दी। इसने पूरे बाजार में ऐसे हाथ को किया करके कहा लोगों सुनो, मैंने चोरी की थी, मेरे उंगलियां उसने काटी जो सिर इब्राहिम है, जो अंबियाओं के उलूम का वारिस है, जो जबूर का दरिया है, जो इंजील का एलिया है, जो इमाम मैशर है, जो साखिय कौसर है, जो खसीम नारे व जन्ना है, जो दीन का सरदार है, जो मुत्तकीन का इमाम है, उसके बाद कहता है जो नेक इमामों का बाप है। लोगों ने जाके कहा मौला वो तो आपका खसीदा पढ़ा। अली ने उसको बुलाया, उसूल में सख्त है, जाके कहा मैंने तेरी उंगलियां काटी तू मेरा खसीदा पढ़ा। तो उसने कहा मौला आपने अपनी मर्जी से थोड़ी काटी, क्या बात है ना, देखो आप देखो, कहता मौला आपने अपनी मर्जी से थोड़ी काटी, जो इस्लाम का उसूल था, जो रूल था, उस पर आपने काम किया, मैं राजी हूं उससे। मौला ने उंगलियां मंगाई लगा दी। वो अली का उसूल था, ये अली का करम है। वो मेरे मौला का उसूल है, उसूल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, करम करम है मौला का, उन्हीं का तो करम है। तो ये चीज याद रखो, ये बोल के कभी भी नहीं बच सकते तुम। मिसाल के तौर पर तुम म्यूजिक सुन रहे, इंडियन मूवी देख रहे, अब इसका यह मतलब नहीं है कि तुम इंग्लिश देख सकते। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? यह मतलब नहीं है कि तुम मराठी देख सकते, गुजराती देख सकते, मैं हिंदी नहीं बोलता, वो तो कोई देखता ही नहीं ना। तो जो उसूल है उस उसूल पर रहना। यार मैं यही बोलता कि अगर अगर रियली आई लव इमाम अली तो मैं कुछ तो बात सुनू, कुछ तो मौला जी जिंदगी में बोलू। ये जहन से निकालो कि आई डोंट नीड टू चेंज माई सेल्फ, यह जहन से निकालो। यह अगर मेरे जहन में कि आई एम परफेक्ट, तो सबसे बड़े गुनाहगार तुम हो। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम यह कि मुझे फिक्र ही नहीं। मैं बोलता कि यार मैंने सॉरी क्यों बोलूं? व्हाई शुड आई से सॉरी व्हाट आई हैव डन? मैं ये नहीं बोल रहा सॉरी बंदों को बोलो, मैं बोल रहा अल्लाह को बोलो, इमाम अली को बोलो। जबान पे हमेशा सॉरी रहना, अस्तगफार हमेशा। जो इंसान कसरत से अस्तगफार करता अल्लाह उसको चार्ज। ये भी आगा खुमैनी का जुमला है, आगा खुमैनी बोलते हैं कि तुम जितनी कर, क्यों अस्तगफार पढ़ने से, बात गौर से सुनो, आगा ने कहा कि अस्तगफार करने से तुम्हारा गुरूर टूटता, तुम्हारा तकब्बुर टूटता, इसलिए कि आपका ईगो खत्म होता अगर तुम अस्तगफार सॉरी बोलोगे। वरना इंसान जो साहेब स्टेटस है तो बोल सकता सॉरी, कभी नहीं बोलेगा सॉरी। आगा ने कहा तुम अगर सॉरी बोलोगे, तुम्हारी जिंदगी में गुरूर और तकब्बुर को तोड़ना है तो तुम जो है सॉरी बोलते रहो, अस्तगफार अल्लाह से करो, जितना करोगे अल्लाह तुमको इतना बुलंदियों पर ले जाएगा। और आगा के बारे में ये कि अपने उसूल में इमाम अली की तरह इतने सख्त, किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे उसूल के मामले में, कभी कॉम्प्रोमाइज, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज है। वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही अच्छे अच्छे अखलाक, लेकिन इस्लाम के मामले में ईमान के, प्लीज गौर से सुनो, एक मंजिल तक मैं लेके जा रहा हूं आपको, जो मेरे पास प्रेशर है, आई कैन शो यू माई टेलीफोन माई व्हाट्सएप, जो मेरे पास इस वक्त प्रेशर है बोलने के लिए खैसरबाग के मेंबर से, उसूल के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट। कि वहां पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना। ये चीज बॉम्बे के यूथ, बॉम्बे ने पूरी दुनिया के यूथ को बोला। कल रात में लंदन में अहमदाबाद चैनल के चैनल पे बोला, फिर अच्छा फन मैसेजेस आ गए मेरे पास, आई कैन शो यू इफ यू वांट टू सी, मेरा टेलीफोन यही है, हर तरफ से है। यहां पे क्या पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है दोस्तों। मैं यूथ को बोल रहा हूं, बैचलर्स को बोल रहा हूं, लड़कियों को बोल रहा हूं, लड़कों को बोल रहा हूं, जो हर सभा के मेंबर से मुझे सुन रहे कि तुम लोग किस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो यार, बुला दली में किसी गैर से शादी नहीं करना, इंटरकास्ट मैरिजेस को छोड़ो। गुलिस्तान के अशर में पढ़ूंगा इसकी जो तबाही है आज हमारी कम्युनिटी का। मैं लड़कियों को बोल रहा, अगर तुम फ्रेंडली हो भी किसी घर से, तो इस साल मुहर्रम में इमाम हुसैन को तोहफा दे दो। इस साल मुहर्रम में हुसैन के खातिर, मौला हुसैन के खातिर अपने जनरेशन को खराब मत करो। मैं कुछ बोल रहा आपको, अपनी नस्ल को खराब मत करो। मेरी आज बात हुई, मैं मुझसे कहने लगी कि मौलाना मौलाना व्हाट टू डू, आई एम फ्रेंडली। कब से फ्रेंडली? स्कूल से। ठीक है, अब क्या है? मुझे उस लड़के से शादी करना। वो कहती है कि मौलाना वो हमारे मजहब में आ गया, हमारे मजहब को पालता है। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारे मजहब को पालता है? कैसे पालता है? मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, यूरोप अमेरिका वालों के लिए पालते का मतलब फॉलो करता, ये बॉम्बे की जमाने पे बोल रहा हूँ, समझ में आई बात? मैं सिर्फ बॉम्बे वालों के लिए तो नहीं पढ़ रहा। तो उसने कहा कि वो कहती है कि मौलाना वो तो हमारे मजहब में आ गया। मैंने कहा कैसे आया? तो कहती है कि ये बाहर में वो मदरसों में भी आ रहा, लास्ट ईयर भी उसने मदरसे की थी। मैंने कहा मदरसों में किसके लिए कैसे आ रहा? हुसैन की मोहब्बत में आ या तुम्हारी मोहब्बत में आ रहा? बोलो यार, किसकी मोहब्बत में आ रहा? मौला हुसैन की मोहब्बत में आ रहा या तुम्हारी मोहब्बत में आ रहा? उसके बाद कोई आंसर नहीं था। शी सेड आई डोंट नो। मैंने कहा तुम इनोसेंट है, तुम भोले। क्या है जे? 23 है। आप सोचो 22-23 साल की लड़की एक दुश्मन अहले बैत के साथ फ्रेंडली हो गई। आपको मालूम इसी बॉम्बे का मैं एक वाकया सुनाता आपको। बड़े भाई, अब बड़े भाई समझो, मैं यार मेंबर से नहीं बोल सकता, मर्जी से हर तरफ जा रहे लाइफ, आप समझ रहे ना। वो जो बॉम्बे का एक मशहूर नंबर है, मैं क्या मुझे नहीं मालूम वो नंबर क्या है। बॉम्बे का एक मशहूर नंबर है एक कम्युनिटी के लिए, समझ गया ना। तो वो नंबर का लड़का शिया बच्ची से निकाह किया, शादी किया, 3 महीने के अंदर बच्ची प्रेग्नेंट हो गई। ही सेड नाउ यू गेट आउट फ्रॉम हियर। घर आ गई, अब रो रही है। मैंने कहा जब मना किए थे तुम सुने नहीं, ये लोग दुश्मनी कर रहा मुहर्रम की, हुसैन से दुश्मनी है। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा मेरे यूथ को, पूरी दुनिया की, अभी तो आज छेड़ा हूं टॉपिक, 2 दिन चलेगी ये टॉपिक। कॉम्प्रोमाइज उसूल में सख्त रहो। दुनिया के जुमले मेरे गौर से सुनो, दुनिया की हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो। फिर बोल रहा हूं, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करो, बट नो कॉम्प्रोमाइज इन विलायत अली एंड आजादारी हुसैन। कभी नहीं करना इमाम अली की विलायत में, नो कॉम्प्रोमाइज। इमाम अली की विलायत में तुम्हारे ऊपर अगर $1,000,000 भी तुमको कोई दे दे, उस पैसे को ठोकर मारो, लेकिन अली की विलायत को छोड़ो मत। ये याद रखो, जो अली दे सकता वो कोई नहीं दे सकता, समझ में आई बात। कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर। कितनी भी हमने उस लड़की से आज का कि तुम्हें ग्लैमर के पीछे जा रहे, हुसैन के पीछे जा रहे, एक प्लेजर के पीछे जा रहे, कितने साल का यह प्लेजर है? फॉर एवर जो तुम्हारी लाइफ है उसका क्या कर रहे हैं, तुम्हारी नसर। उसके बाद मैंने मुझसे पूछा कि अब बच्चे होंगे तो क्या होगा, कौन से रिलीजन को फॉलो करेंगे, बच्चा होगा? उसने कहा नहीं, वो कह रहा आपके रिलीजन पे रहे। उन्होंने कहा क्यों इतना फ्री प्लेट में केक दे रहा वो, तुमसे शादी करना है। एक दफा शादी हो गई, तुम उसके घर चले गए और उसने बोला औलाद बेटा होगा तो वो नाम रखो, तुम रखोगी? मैं नाम मेंबर से ना ले सकता। मैंने कहा बेटी हो तो वो बोलेगा वो नाम रखो, ये मेरी राइट है, मेरी बेटी है, मैं शौहर, क्या करोगी तुम? तुम अपनी बच्ची को उस नाम से पुकारोगी, उस नाम से अपने बेटे को पुकारोगी? तुम ऐसा अगर ये तुम लोग कर रहे ऐसा नस्ल को दबाओगे, कितने साल जिंदा रहना यार, 30-40 years? देन यू हैव टू आंसर बीबी। मां बाप को भी बोल रहा, पेरेंट्स को भी बोल रहा कि खाली बैठ के पैसे के चक्कर में मत पड़ो, अपनी औलाद को सिराते मुस्तकीम पे रखो। औलाद तुम्हारी अमानत है, रहबर इंकलाब का जिंदगी को देखकर ये सोचो कि रहबर के वालदैन ने कैसे कैसे अपनी औलाद को किया। हर घर से पूरी दुनिया को बोल रहा, जो जो इमाम अली का शिया है, हर घर में एक रहबर पैदा होना, अपने मां बाप को बोल रहा, पेरेंट्स को बोल रहा कि अपनी औलाद को ऐसा बैठो, औरतों को बोल रहा कि अपने बच्चों के साथ बैठो, बाप को बोल रहा कि सिट विद द किड्स एंड टॉक टू देम, टाइम को स्पेयर करो, स्पेयर करके इमाम अली की विलायत में और आजादारी हुसैन का बताओ, तुम्हारी जिंदगी का मकसद बताओ कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। सब वक्त पढ़े मोहम्मद मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे आप सबको। आप सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, आज हमारे, मैं अपनी इंडिया की बात कर रहा हूं, आज हमारी कम्युनिटी में क्या हालत है आपको पता है? आपके शहर में, हर शहर में, मैं ये नहीं बता कि खाली बॉम्बे में, नो, कोई इंडिया का शहर, वेस्ट में तो है, ईस्ट में भी है, कोई इंडिया का शहर ऐसा नहीं है लड़कियों को बोल रहा कि बाबा जब तुम ड्रेसिंग करो अय्याम अज़ा में, जुलूस में शरीक हो रहे, मजलिसों में जा रहे, बगैर हिजाब के वो मजलिस होती कैसा है? कैसे हो रही मजलिस? एक जगह से दूसरी जगह जा रहे, चैटिंग कर रहे, फायदा क्या वो मजलिस में जाके? व्हाट इज द यूज? मेरी रिक्वेस्ट है, अब बड़ी रातें आ गई, मुसीबत की रातें आ गई, कोशिश करो कि ये साल शियत को प्रोटेक्ट कर लो। बड़ी मुसीबतों से यहां तक पहुंची है, बहुत तकलीफों से पहुंची है, ये याद रखो कि तुम्हारे हुसैन और हुसैन के साथी 3 दिन भूखे प्यासे रह के इस्लाम को बचाया, सकीना तमाचे खाखा के इस्लाम को बचाया, सैदानियों ने अपने सर से चादर दी उसके बाद इस्लाम बचा। तुम लोग इतनी जल्दी इस्लाम को पामाल मत करो, इतनी जल्दी इस्लाम को पामाल मत करो अपने अमाल से। दोस्तों बड़ी रातें आ गई, मुसीबत की रातें, जब आज मैं यहां एंटर हुआ तो मुझे यहां का माहौल बिल्कुल अलग लगा। मेहंदी सजी हुई है, आपने सुन लिया मैंने कह दिया, आपने गौर किया, रोज जैसा यह घर ये इमाम होता था आज ऐसा नहीं है, जो आ रहा मेहंदी की ज्यारत कर रहा। ये किसकी मेहंदी है? किसकी मेहंदी है? उस शहीद की मेहंदी है जो हसन का यतीम था, हसन के यतीम की मेहंदी, उस शहीद की मेहंदी है जो जिंदगी में पामाल हो गया। मैंने बहुत बड़ा जुमला बोला, आपने गौर नहीं किया, करबला के शहदा शहादत के बाद पामाल हुए, ये करबला का दूल्हा जिंदगी में पामाल हो गया। कितनी आज आप मेहंदी उठाएंगे, मेहंदी का नहा पड़ेंगे, जब आप मेहंदी उठाएं तो ये सोचो कि ये मेहंदी, काश ये क्यों उठा रहे मेहंदी, इसलिए उठा रहे कि खासिम की मेहंदी उठाने वाला कोई नहीं था, बहने थी करबला में कोई उठाने वाला नहीं, तो हम अपनी ख्वाहिश को पूरा कर कि अगर आप होते तो शहजादे की मेहंदी उठाते, یہ کربلا کا عجیب دولہا ہے دوستو. یہ ایسی شادی تھی کہ جس میں دولہا بھی پیاسا تھا, دلہن بھی پیاسی تھی, سارے براتی پیاسے. شہزادہ قاسم اس مظلوم شہزادے کا نام ہے کہ جس کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی, اتنی خواہش تھی جنگ کرنے کی کہ بار بار پوچھتے تھے کہ چچا جنگ ختم کیسے ہوتی. اسی لیے قاسم کو جنگ کی سخت ترین مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. شب عاشور مولا حسین فیرست سنا رہے, لس سنا رہے, شہزادہ کھڑا ہو گیا, کھڑے ہو کے کہا چچا کیا میرا نام نہیں ہے, کتنی خواہش ہے جنگ کرنے کی. امام حسین نے کہا بیٹا کل کے دن موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو کہا چچا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو امام نے کہا میرے لال تمہارا نام بھی ہے, تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام. بس علی اصغر آپ نے سن لیا, علی اصغر کا نام سنا قاسم کانپنے لگے, حسن کا خون رگوں میں دوڑنے لگا, کہنے لگے چچا کیا شیخ ہمیں تک آئیں گے؟ میں کہوں شہزادے آہستہ بولیے کہیں زینب نہ سن لے, شام غریبہ میں جب قیمت جلیں گے تو بی بی پکارے گی قاسم دیکھو فوج کہاں تک آ گئی. رات گزری صبح نمودار ہوئی, ایک ایک شہید ہوا, بار بار شہزادہ آ کے مولا حسین سے کہتا با چچا مجھے اجازت دیجیے. حسین تکلف کرنے لگے. ایک منزل ایسی آئی, آن محمد کی میتیں آئی, اس وقت بی بی ام فرما نے کہا بیٹا تعویذ تو کھولو. اب جو تعویذ کھولی دوستو یہ تعویذ نہیں تھی, یہ بھائی کو بھائی کا نام خط تھا. حسن کا خط لے کر حسین کے پاس آئے, مولا حسین نے جیسے ہی بھائی کی تحریر کو دیکھا حسن کی محبت یاد آئی, حسن کا زمانہ یاد آیا, کہنے حسن نے لکھا تھا بتا حسین میں نہیں رہوں گا عاشورے میں, میری طرف سے قاسم کو اجازت دے دو, اسی طرح پرسا دو اللہ تم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. بس یہ کہنا تھا دوستو. مولا حسین نے کہا میرے لال تم نے مجبور کر دیا, قاسم کو اجازت ملی. جب شہزادہ چلنے لگا تو ام فروا نے کہا بیٹا میدان میں جانا تو واپس نہیں آنا, روز محشر فاطمہ کو صورت بتانا. شہزادہ باہر آیا, ظالم عمر سعد کہتا ہے اس وقت کا سب سے بڑا پہلوان تھا, ہزاروں لوگوں سے لڑنے والا. عمر سعد ظالم کہتا ہے ارزق سے جا قاسم سے مقابلہ کر. اس نے کہا یہ میری توہین ہے, یہ میری انسلٹ کہ میں اس بچے سے لڑوں. میرے سات بیٹے, کیا غرور تھا اس کا, سات بیٹے, ایک بیٹے کو بھیجوں گا وہ مار کے لڑا لے گا قاسم کا سر. ایک آیا شہزادے نے واسل جہنم کیا, دو تین چار پورے سات کے ساتھ آ گئے. اسی طرح تلوار چلی جیسا جمل میں اور صفین میں حسن کی چلی تھی, ایسا ایسی جنگ کی قاسم نے. جب سات بیٹے قتل ہو گئے, ارزق کی آنکھوں میں خون اتر آیا بیٹوں کے انخلاب پہ, ریونج لینے کے لیے وہ میدان میں آ گیا. جیسی ارزق میدان میں آیا مولا عباس کے یہ شاگرد ہیں یہ کہنے سے باہر آ گئے. عباس نے آگے کہا بیٹا گھبراؤ مت, بیٹا گھبرانا نہیں, بیٹا لڑو. عزیزوں کچھ دیر میں دھواں اٹھا, گرد اٹھی, جب گرد ہٹی تو قاسم کے ہاتھ میں ارزق کا سر تھا. عباس دوڑتے ہوئے میدان میں آئے, آگے قاسم کو سینے سے لگا کے کہا میرے لال بہت اچھی جنگ کی, تمہاری جنگ دیکھ کے بابا کی جنگ یاد آ گئی. بس دوستو قاسم لڑ رہے تھے, ان کے چہرے پہ ایک نقاب تھا, جب نقاب ہٹتا تھا دشمن کہنے لگے ارے کتنا حسین ہے. ارے جو دشمن کی نگاہ میں حسین ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا. لڑتے لڑتے کربلا کا دولہا زخموں سے چور ہو کے گھوڑوں سے زمین پر آیا, اپنے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے چچا کا انتظار کر رہے تھے. حسین عباس اور علی اکبر میدان میں آئے, بیچ میں فوج آ گئی, ادھر کے گھوڑے ادھر ہونے لگے, قاسم پکارنے لگے چچا میری مدد کرو, چچا میری مدد کرو. حسین پہنچے تو لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے, عزیز آباد بچھائی ٹکڑوں کو رکھا, خانے میں پہنچے زینب نے کہا بھیا قاسم کہاں ہے, گنجی کھولی تو بیویوں میں کوہرام مچ گیا, وا محمد وا قاسم کی آوازیں. پروردگار میرے شہزادے قاسم کے مصائب کا واسطہ ہماری یہ مجلس بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہم اللہ جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. میرے امام زمانہ فرزند زہرا کو سلامت رکھ, عزاداری کی حفاظت فرما, تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے مرحومین کو بخش دے, میرے امام کے ظہور میں تاجیر فرما, ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما.